पद संख्या 16। पुनि आए सिंहल गढ़ पासा, का बरनो जनु लाग अकासा। तरहि करिन वासुकी कै पीठी, ऊपर इंद्र लोक पर दीठी। परा खोह चहु दिस असमाका, कांपै जांघ जाय नहीं झाका। अगम असूझ देख डर खाई, परे सो सपत बतारहि जाई। नव पौरी बाँके नव खंडा, नवोज चढ़य जाय ब्रह्महंडा। कंचन कोट जरे जग सीसा, नखतहि भरी बीज जन दीसा। लंका चाहे ऊंच गढ़ ताका, निरखिन जाय दीठी तन थाका। ये न समाये दीठी नहीं, जानहु ठाढ़ सुमेर। कहन लग कहो ऊंचाई, कहन लग बरनो फेर। प्रसंग। ये पंक्तियां हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के निर्गुण धारा के प्रेमार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य पद्मावत के सिंघल द्वीप वर्णन खंड से अवतरित है। इसके रचयिता जायसी है। कविवर जायसी सिंघल द्वीप के विशाल किले की महत्ता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या। अब सिंघलगढ़ के पास आइए, मैं इसका वर्णन करूँ। यह तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश को छू रहा है। इस किले की नींव इतनी गहरी खोदी गई है कि कासुकी नाक की पीठ को छूती है। इधर इसकी ऊंचाई इतनी है कि इंद्रलोक दृष्टिगोचर होता है। किले के चारों ओर खाई इतनी गहरी कि देखते समय पांव कांपने लगते हैं, झांक कर देखा नहीं जाता। ऐसा असूज लगता है और भय मालूम होता है कि यदि गिर पड़े तो सातवें पाताल में जा पड़ेंगे। उस कोट में नौ बांके द्वार हैं और नौ खंड यान मंजिले हैं। जो नौ खंडों पर चढ़ जाता है वह आकाश में पहुंच जाता है। कंचन के कोट पर कंगूरे जड़े हुए ऐसे दिखाई देते हैं मानो नक्षत्रों से भरे आकाश में बिजली चमकती हो। वह गढ़ लंकागढ़ से भी ऊंचा दिखाई पड़ता था, इसलिए वह देखा नहीं जा सकता। उसकी ओर देखते हुए दृष्टि तथा तन थक जाते थे। वह इतना विशाल था कि हृदय की कल्पना में नहीं समा सकता और उसकी ऊंचाई तक दृष्टि नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वह ऐसा है मानो सुमेरी पर्वत ही खड़ा हो। उसकी ऊंचाई कहाँ तक कहूँ और कहाँ तक उसके घेर अर्थात विस्तार का वर्णन करूँ। विशेष अलंकार। पुनिपासा करिन्न कै जांग जाय अगम असूज, परय बता रही सो सपत कंचन कोट समाय सुमेरु में अनुप्रास। जानु लाग आकाश नखतय भरी बीज जनु दीसा। जानहु ठाढ़ सुमेर में उत्प्रेक्षा, कहाँ लग फेर में काक वक्रोक्ति। लंका चाहे ऊंच गढ़ ताका में व्यतिरेक तथा पूरी अवतरण में अतिशोक्ति अलंकार है। दूसरा। नव पौरी बाकी नव खंडा, नवहु जू चढ़य जाय ब्रह्महंडा में सिद्धों का हठयोगी दृष्टिकोण झलक रहा है। रूपक के माध्यम से नव इंद्रियों को हठयोग के द्वारा साधन एवं संयम से करने में ब्रह्मांड में पहुंचने वाली बात कही गई है। यहाँ इस संबंध में अधिक रूपक अथवा ऊहापोह की कल्पना उचित नहीं समझना चाहिए। जायसी का विशेष लक्ष्य सिंघल के किले का ही वर्णन करना है। हाँ, आगे का भाव व्यापक बना है। श्री राजनाथ शर्मा का कथन है, हठयोग से इस मानव शरीर को ही संपूर्ण संसार का रूपक मानकर साधना की जाती है। उपर्युक्त पंक्ति में नव पौरी तथा नव खंडा शब्द मानव शरीर के नव इंद्रियों के प्रतीक है, अर्थात दो आँख दो कान दो नाक छिद्र एक मुख एक लिंग तथा एक गुदा। इनको साध लेने अर्थात वश में कर लेने के उपरांत कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग द्वारा ब्रह्म रंध्र में पहुंचती है और यह पहुंचना ही इस साधना की चरम उपलब्धि है। यहाँ ब्रह्मांड शब्द ब्रह्म रंध्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। कुछ आलोचकों ने इस प्रकार के वर्णनों के आधार पर ही पद्मावत को अनुयोक्ति माना है। नवद्वार और नवखंड से शरीर की ओर संकेत है। दोहा चौपाई छंद अद्भुत रस तथा कोमल सरस व्यवहारिक अवधि भाषा है। पद संख्या 17। नीतिगढ़ बाज चले शशिशुरु, नाहित होई बाज रथ चूरु। पौरी नवो वज्र कै साजी, सहस सहज तह बैठे बाजी। फिर ही पांच कुतवार सुभौरी, कांपय पापय चपत वह पौरी। पौरी ही पौरी सिंह गाढ़ी गाढ़ है, डरपहि लोग देखि तह ठाढ़ है। व भव विधान वय नाहर गढ़े जनु गाजह चाहें सिर चढ़े टारहें पूछ पसारहें जीहा कुंजर डारह की गुंजर लीहा कनक सिलागढ़ी सीढ़ी लगाई जग मगही गढ़ ऊपर ताई नव खंड नव पौरी अवतह वज्र केवार चार बसेरो सो चढ़ें 700 उतरें पार। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्ग शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के सिंघल द्वीप वर्णन खंड से उद्धृत किया गया है। प्रस्तुत अवतरण में कवि जायसी ने सिंघलगढ़ का एक बहुत संश्लिष्ट एवं रहस्यपूर्ण वर्णन किया है। संपूर्ण अवतरण में दो अर्थ निकलते हैं, एक गढ़परक और दूसरा योगपरक, एक तीसरा सूफी साधना परक अर्थ भी व्यंग्य है। व्याख्या चंद्र और सूर्य नित्य उस ऊंचे गढ़ को बचाकर चलते हैं, नहीं तो टकराकर उनका रथ और घोड़े चूर चूर हो जाएंगे। उस गढ़ की नौ पूरियों कठोर लोहे की बनी है, अर्थात अत्यधिक दृढ़ है। कहने का भाव है कि इस शरीर रूपी गढ़ में सूर्य और चंद्रमा अलग अलग रहते हैं, यदि उनका मिलन हो जाए तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाए। नौ चक्र वज्र के समान दुर्भेद्य हैं, नौ द्वारा हीरे के बने हैं, प्रत्येक के सामने एक एक सहस्त्र पैदल सैनिक बैठे हैं, पांच कोटपाल उसकी भौंरी देते अर्थात निरीक्षण के लिए घूमते हैं। उस द्वार पर पैर रखते ही जी कांपने लगता है, कहने का भाव है कि उसके द्वार पर सहस्त्र सहस्त्र दुष्ट मनोविकार बाधक रूप रहते हैं, वे साधक को चक्र भेदन नहीं करने देते हैं। पंच क्लेश रूपी पंच कोतवाल साधक को चक्रों का भेदन नहीं करने देते, अतः उस साधना मार्ग में चरण रखते हुए भय लगता है और बड़े संभाल कर पैर रखने पड़ते हैं। द्वार द्वार पर पाषाण के गढ़े हुए सिंह खड़े हुए हैं, उनसे लोग डर जाते हैं और उन्हें देख कर खड़े रह जाते हैं। वे नाहर अनेक प्रकार से गढ़े हुए हैं, मानो वे गरज कर सर पर चढ़ जाना चाहते हैं। वे पूंछ घुमाते और जीभ निकालते हैं, उनमें हाथी भी डरते हैं कहीं गरज कर पकड़ न ले। सोने की शिलाओं को काट छांट कर सीढ़ियां बनाई गई हैं जो गढ़ के ऊपर तक जगमगा रही हैं। कहने का भाव यह है कि हर चक्र की अधिष्ठात्री कोई न कोई देवी है, उसका सिंह साधक को चक्र भेदन में अग्रसर नहीं होने देता, उसे खाने का प्रयास करता है। वे पूंछ हिलाते हैं तथा जीभ पसारते हैं, ऐसा लगता है गरज कर सिर पर चढ़ जाएंगे। उनके डर से साधक अपनी साधना से परांगमुख होने लगता है। अज्ञान रूपी हाथी उन सिंहों को देखकर डर जाते हैं। उस गढ़ तक सोने की सीढ़ियां बनी हुई हैं, सुषुम्ना का रंग योग ग्रंथों में स्वर्णिम बताया गया है। नौ खंडों पर नौ द्वार हैं, उनमें वज्र के किवाड़ लगे हुए हैं, उस पर चार पड़ाव देकर चढ़ना चाहिए। जो सत्य से चढ़ेगा वह पार पहुंच जाएगा। कहने का भाव यह है कि शरीर रूपी सिंघलगढ़ में नौ चक्र हैं, इन चक्रों के नौ द्वार हैं, वे द्वार वज्र के समान दुर्भेद्य हैं। जो साधक चार पड़ाव प्रत्याहार ध्यान धारण एवं समाधि के क्रम में सत्य के सहारे साधना करता है वही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। विशेष अलंकार शशि सुरु पाय पौरी पौरी ही पौरी बहुविधान चाह ही चढ़े मूछ पसारहे शिला सीढ़ी सत औ में अनुप्रास सहस सहस में पुनरुक्ति प्रकाश तथा बहुविधान सिर चढ़े में उपेक्षा अलंकार है। तारही पररोही में ध्वनि साम्य है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने सूफी साधना परक अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया है। इस अवतरण में एक तीसरा सूफी साधना परक अर्थ भी व्यंजित किया गया है। सूफी साधना में साधक को सालिक या यात्री कहा गया है। साधना एक मार्ग है जिसमें चार पड़ाव बहुत से मुकामात हैं। चार पड़ावों के नाम हैं शरीयत तरीकत हकीकत एवं मारिफत है। मुकामात के संबंध में मतभेद है। कुछ लोगों ने इसकी संख्या 11 बताई है, कुछ 9 मानने के पक्ष में है। जायसी संभवतः 9 मुकामात मानने के पक्ष में है। 9 बौरी संभवतः 9 मुकामात के प्रतीक हैं। साधक जब 9 मुकामात और चार पड़ावों को पार कर सत्य का आश्रय लेकर मंजिले मकसूद या राजद्वार पर पहुंचता है तभी उसको सिद्धि मिलती है। मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, वे ही सहस्त्र सहस्त्र पाजी हैं। काम क्रोध मदलोभ और मोह पांच कोतवाल हैं जो साधक को सन्मार्ग पर नहीं जाने देते। बड़े बड़े भयानक सिंह रूपी आकर्षण साधक यात्री को और अधिक डराते हैं। तीसरा किले के वर्णन के रूप में सूफी साधना का वर्णन है। चौथा दोहा चौपाई छंद अद्भुत रस तथा कोमल सुबोध व्यवहारिक अवधी भाषा है। पद संख्या 18। नव पौरी दस दसम द्वारा तिहि पर बाज राज घरियारा। घरि सो बैठी गने घरियारी पहर पहर सो आपन बारी। जब हैं घरि पूजित ते धारा घरि घरि घरियार पुकारा। पराज डाण जगत सब डाणा का निचिंत माटी कर भाणा। तुम तेह जाग चढ़े ही कांचे आयह रहे नथिर होई बाँचे। घरी जो भरी घटी तुम आओ का निश्चिंत हो सो बटाऊ। पहर ही पहर गजर निति होई हिया बजर मन जाग न सोई। मोहम्मद जीवन जलभरन रहट धरी कई रीत। घरी जो आई जो भरी ढरी जन्म का बीत। प्रसंग यह छंद हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की निर्गुण धारा के प्रेमार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा विरचित महाकाव्य पद्मावत के सिंघल द्वीप वर्णन खंड से उद्धृत है। प्रस्तुत छंद में जायसी ने जीवन की अनित्यता के संबंध को मार्मिक शब्दों में स्पष्ट किया है। यह जीवन रहट के समान है, जो ही वह भरती है ढुलक जाती है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी सहजता से व्यतीत हो जाता है। व्याख्या। नौ द्वारों के बाद दसवां द्वार है, वहाँ का राजा घड़ियाल सदैव बजाता रहता है। घड़ियाल बजाने वाला बैठा घड़ी गिनता रहता है। उनकी एक एक पहर की अपनी अपनी बारी लगती है। जब घड़ी पूरी हो जाती है तो वह घड़ियाल बजाता है। एक एक घड़ी पर घड़ियाल पुकारता है। घड़ियाल पर जो डंडा पड़ा उसने सारे संसार को एक घड़ी से दंडित कर दिया। भाव यह है कि सबकी आयु में से एक घड़ी ले ली। हे मिट्टी के भाड़े तुम कैसे निश्चिंत हो, तुम भी कच्चे होकर उस चाक पर चढ़े हो। लौटने के लिए ही यहाँ आए हो, स्थिर होकर नहीं रहोगे। जब पाने की घड़ी की घंटी भर जाती है तब तुम्हारी आयु उतनी ही घट जाती है। रे बटो ही क्या निश्चिंत सोते हो। एक एक पहर के बाद नित्य गजर का बड़ा घंटा बजता रहता है। जो हृदय में चिंता रहित है अर्थात निश्चिंत है, शोक रहित है, वह उस गजर की आवाज से भी नहीं जाग पाता है। कवि जायसी संबोधन करते हुए कहता है कि जीवन के जल का भरना अरहट की घरिया की रीति से हो रहा है। जैसे वह घरिया भरी हुई आती है और ढल जाती है, वैसे ही जन्म भी बीत रहा है। विशेष अलंकार। दसवां द्वार घरी घरियार घरी घरियार डाण डाणा। तुम तेह चाक चढ़े पर पहर रही पहर जीवन जल रहट रीति में अनुप्रास। पहर पहर घरी घरी में पुनरुक्ति प्रकाश। पहर रही पहर में सभंग पदमय यमक का निश्चिंत माटी कर भाड़ा में प्रश्न। या भजर में रूपतोपमा तथा जीवन जल में रूपक घरी जो गीत में पूर्णोपमा अलंकार है। बाजराज घरी भरी में ध्वनि साम्य है। दूसरा माता प्रसाद गुप्त के अनुसार इस छंद में कवि ने जीवन की अनित्यता के संबंध में मार्मिक शब्दों में कहा है। किसी आध्यात्मिक उद्देश्य से लिखी गई प्रेम कथा में ही इस प्रकार की कथन आ सकते हैं। इसलिए रचना जिस उद्देश्य से की गई है वह कवि के इस प्रकार के कथनों से निश्चित हो जाता है। तीसरा जैसी ने जीवन की अनित्यता की ओर अनेक प्रकार से संकेत किया है। चौथा दोहा चौपाई छंद आध्यात्मिक संकेत एवं सरल मधुर कोमल व्यावहारिक अवधि भाषा है। पद संख्या 19। गढ़ पर नीर खीर दुई नदी पनिहारी जैसे दुर्पदी। और कुंड एक मोती चूरू पानी अमृत कीच कपूरु। ओहिक पानी राजा पै पिया प्रिध होई नहीं जौलहि जिया। कंचन बिरिछ एक तेहि पासा जस कलप तरु इंद्र कविलासा। मूल पतार सरग ओहि शाखा अमर बेल को पावज चाखा। चाँद पात और फूल तराई वही उजियार नगर जह ताई। वह फल पावे तप करी कोई बिर दिखाई तो जौवन होई। राजा भय भिखारी सुनि वह अमृत भोग। जय पावा सो अमर भा ना किछु व्याधि न रोग। प्रसंग यह अवतरण भक्तिकाल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्ग शाखा के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य पद्मावत के सिंघलगढ़ खंड से उद्धृत है। इसके रचयिता जायसी हैं। प्रस्तुत अवतरण में जायसी द्वारा गढ़ के एक रहस्यपूर्ण स्थल का वर्णन किया गया है। इसके दो अर्थ निकलते हैं, गढ़परक अर्थ एवं हठयोगिक अर्थ। व्याख्या। सिंगलगढ़ में नीर और छीर नामक दो नदियां हैं। उनका पानी भरने वाली नारियां द्रौपदी के समान सुंदर है। वहां एक मोतीचूर कुंड है, उसका पानी अमृत रूप है और कीच कपूर के समान है। उसके जल को पान करने का अधिकार राजा को ही होता है। उस पानी को पी लेने वाला जब तक जीवित रहता है कभी वृद्ध नहीं होता। उसके समीप ही एक स्वर्ण वृक्ष है जो इंद्र के स्वर्ग के कल्पतरु के समान है। उस वृक्ष की जड़ें पाताल में हैं, जबकि शाखाएं स्वर्ग तक फैली हुई हैं। उस पर फैली हुई अमर बेल कौन पाता है और कौन चख सकता है? चंद्रमा उसके पत्ते हैं और तारे फूल हैं। जहां तक नगर है सर्वत्र उसका उजाला है। उसके फल को तपस्या करके कोई पाता है, कोई बूढ़ा खा ले तो नया यौवन पा जाता है। उस अमृत फल की प्राप्ति की कामना से राजा भिखारी हो गए। जिसने उस फल को प्राप्त कर लिया वह अमर हो गया, उसकी सारी व्याधियां एवं रोग दूर हो जाते हैं। हठयोगिक अर्थ। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार इस छंद में हठयोग के तत्वों की ओर इस प्रकार संकेत किया गया है। यह मानव शरीर ही गढ़ है। यथा गढ़ तक बांक जय सितोरी काया, परख देखो उही कहे छाया। इस काया गढ़ में नीर तथा छीर नाम की दो नदियां ईड़ा तथा पिंगला है। मोतूचूर का कुंड सुषुम्ना है। कंचन वृक्ष चेतना वल्ली है जो पाताल से लेकर आकाश तक फैली हुई है। उसी का प्रकाश समस्त कायागढ़ में होता रहता है। काया की समस्त चेतना उसी का परिणाम है। उस अमृत वल्ली का फल आत्मानुभव है। इसका सेवन करने से जन्म मरण का भय नहीं रहता है। इस अमृत फल को तब द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसको प्राप्त करने के लिए भर्तृहरि जैसे राजा राज्य छोड़कर भिखारी बने। उसको प्राप्त कर लेने के अनंतर प्राणी को किसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियां कष्ट नहीं पहुंचा सकती हैं। विशेष अलंकार। नीर नदी कीच कपूर, पानी पै पिया जौ लही जिया, कल्पतरु कबिलासा सरग शाखा करी कोई, भय भिखारी पन प्रास पनिहारी जैसे द्रौपदी, जस कल्पतरु इंद्र कबिलासा में उपमा, मूल पतार सरग ओहि शाखा एवं चांद पात और फूल तराई में रूपक तथा मरबेली को पांव में प्रश्न अलंकार है। नीर खीर में ध्वनि सौम्य है। दूसरा गढ़ के वर्णन के रूप में आध्यात्मिक एवं हठयोग संबंधी संकेत हैं। दोहा चौपाई छंद अद्भुत रस एवं कोमल मधुर सरल व्यवहारिक अवधि भाषा। पद संख्या 20। गढ़पर बसहि झारी गणपति, असुपति गजपति भू नरपति, सब धौराहर सोने साजा, अपने अपने घर सब राजा, रूपवंत धनवंत सभागे, परस पखान पौरी तिन लागे, भोग विलास सदा सब माना, दुख चिंता कोई जन्म न जाना, मंदिर मंदिर सबके चौपारी, बैठ कुंवर सब खेल ही सारी, भाषा ढारे खेल भई होई, खड़ग दान सरी पूजन कोई, भाट वरण कही कीरत भली, पावै हस्ति घोड़ सिंघली, मंदिर मंदिर फुलवारी चौवा चंदन बास, निसि दिन रहे बसंत तह छो ऋतु बारह मास। प्रसंग। अपने महाकाव्य पद्मावत के सिंघलदीप वर्णन खंड से उद्धृत प्रस्तुत अवतरण में कवि जायसी ने सिंघलदीप के सामंतों का वर्णन किया है। गढ़ पर चार प्रकार के राजा सामंत बसते थे, गणपति अश्वपति गजपति और नरपति। सबके धवल गृह सोने से तैयार किए गए थे और वे सब राजा अपने अपने घरों में रहते थे। वे रूपवान धनवान और भाग्यवान थे और उनकी पौड़ियों पर स्पर्श पाषाण अर्थात पारस पत्थर लगे हुए हैं। सदा सब भोग विलास मानते हैं, घरों में बैठकर कुंवर पासा खेलते हैं। पासा फेंका जाता है और बढ़िया खेल होता है। खंग दान अर्थात तलवार के युद्ध में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। भाव यह है कि कोई भी तलवार चलाने में उनका सामना नहीं कर सकता। भाट लोग उनकी गति का विस्तृत वर्णन करते हैं। पुरस्कार में वे सिंघली हाथी घोड़ा आदि पाते हैं। प्रत्येक महल में फुलवारी थी, वहाँ चौवा चंदन आदि सुगंधित पदार्थों की प्रचुरता थी। वहाँ बसंत ऋतु तो सब दिन रहती है, वहाँ बारहों महीने षड ऋतुएं रहती हैं। विशेष अलंकार सब सोने साजा परख पखान पौरी सदा सब जन्म जाना सब सारी भाट भले कही कीरति चोवा चंदन वसंत बारह में अनुप्रास। अपने अपने मंदिर मंदिर में पुनरुक्ति प्रकाश खड़ग दान सरी पूजन कोई में प्रतीप अलंकार है। पूरे अवतरण में समासोक्ति है। अशुपति गजपति में सभंग पद यमक अलंकार है। दूसरा अश्वपति गजपति आदि मध्ययुगीन उपाधियां हैं जो बादशाह लोग सरदारों को दिया करते हैं। तीसरा प्रस्तुत छंद में अंतःकरण की ओर संकेत है। राष्ट्रवादी का अंतःकरण सर्वथा संपन्न होता है, उसे दुख नहीं व्यापता, वह सदा प्रसन्न रहता है। पासों का तात्पर्य ईश्वरीय प्रेम से है। राष्ट्रवादी प्रेम का खेल खेलता रहता है जिसके कारण उसे सदा आनंद रहता है। दोहा चौपाई छंद नगर की संपन्नता का वर्णन तथा मधुर कोमल सरस एवं व्यावहारिक अवधि भाषा है।